ओम शांति। आप सभी ने बाबा को बहुत ही प्यार भरा सुंदर सुंदर अपनी भावनाएं लेटर के माध्यम से बाबा तक पहुंचाया। और अभी हमारे बीच में सर्व के स्नेही यज्ञ रक्षक ज्ञान रत्नों से भरपूर करने वाले हमारे परम आदरणीय ललित भाई जी का हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि गुलदस्ते से और तिलक के द्वारा स्वागत करें और हम सभी तालियों से स्वागत करेंगे। ऐसे तो हम सभी ललित भाई जी को जानते ही हैं, पर मैं संक्षिप्त में भाई जी का परिचय देना चाहूंगी। आपने बाबा का ज्ञान 1993 से प्राप्त किया और 1997 में आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। आप लौकिक में आपकी जो एजुकेशन है, आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके आप सेक्रेटरी भी हैं। मधुबन तथा देश विदेश के जो भी फाइनेंस और जो भी हमारे लीगल मैटर्स हैं उसको आप मैनेज करते हैं। आप अकाउंट, इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में आपने 600 से भी अधिक लेक्चर्स लिए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे बाबा के इस बेहद यज्ञ के एक वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। आप बहुत सुंदर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, भाई जी के लगभग 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आर्टिकल्स प्रिंट हुए हैं। आप बहुत अच्छे एक पोएट भी हैं, कवि भी हैं और नेचुरोपैथी एडवाइजर भी हैं। इसके साथ साथ हमारे जो अहमदाबाद में राजी खुशी जो कैंपस बना है उसके आप को फाउंडर भी हैं। साथ साथ फाइनेंस एंड फैटर्निटी जो है, जो नया एक विंग बना है, उसके आप वाइस चेयर पर्सन भी हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप खास इतना बिजी होते हुए भी आपने समय निकाला। और हम समर्पित बहनें जब भी भाई जी के पास जाती हैं, चाहे छोटी बहनें चाहे बड़ी बहनें, तो हमने महसूस किया है कि भाई साहब भले कितने भी व्यस्त रहते हैं, कितने भी बिजी रहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही आपने बाबा के ज्ञान और योग से अपने आप को बहुत ही इजी रखा है। और आज का बहुत सुंदर विषय भी है, बंधन मुक्त मन अनंत उड़ान। इस विषय पर भाई जी अब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ललित भाई जी,
बंधन सारे छोड़ चले अब मन को आजाद बनाना है। देह अहम और भय की सीमाएं पीछे छोड़ के जाना है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, याद यही जगानी है। बाबा के प्रेम के पंखों से अनंत उड़ान भरनी है। बंधन मुक्त मन अनंत उड़ान, यही है जीवन की पहचान। शांति शक्ति और छूले हम नया बादल अब दूर कहीं खो जाएं, स्वच्छ विचारों की किरणों से जीवन में प्रभात आए, हर संकल्प में शक्ति भर कर नई दिशा अपनानी है, पुराने संस्कारों की जंजीरें तोड़ कर आगे बढ़ना,
शांति। बाबा के बनने के बाद एक परम सत्य से हमारा परिचय हुआ कि हम सब इस यात्रा पर निकले हैं, रिटर्न टिकट के साथ निकले हैं, सबकी रिटर्न टिकट बनी हुई है, केवल डेट और टाइम जो है वो जानना बाकी है, टिकट पैक है। इसलिए सुंदर रिटर्न जर्नी की इस भट्टी में बंधन मुक्त मन कैसे बनाए, ये ज्ञान की कुछ पॉइंट को गहराई से समझते हैं तो यह संभव हो सकता है। प्रायः देखा गया है कि मन भारी होता है जब मन में प्रश्नों की क्यू लगती है, ऐसा इसने कैसे कर दिया, ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी तो ये इतनी पावरफुल क्यू होती है जो कई दिनों तक कई महीनों तक मन को उलझाए रखती है, मन को भारी करती रहती है। और जब तक मन भारी है फरिश्ता बन के उड़ नहीं सकता। और जो हमारी रिटर्न जर्नी है वो उसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। तो क्या बाबा ने हमें कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट बताया है कि जिससे इन प्रश्नों की क्यू को फुल स्टॉप लगा सके, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप लगा सके, ऐसा कोई ज्ञान का पॉइंट बताया है बाबा ने? क्या बताया? कर्म का हिसाब किताब, जो हम डेली कई बार बोल देते हैं, ड्रामा। ड्रामा शब्द कह के हम फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं कि मन में जो क्यू चल रही है उसको फुल स्टॉप लगे, ड्रामा। आप थोड़ा अपने आप का चेकिंग करना कि जब कोई ऐसी बात होती है तो क्या हम ड्रामा बोलते हैं तो ड्रामा बोलते ही फुल स्टॉप लग जाता है? मुख से तो हम ड्रामा ड्रामा बोलते रहते हैं लेकिन मन में तो वही बातें वही क्यों चलती ही रहती है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मन में वही बातें चलती है और कहीं कहीं तो दुख की फीलिंग भी होती है उन बातों के कारण। और यहां एक बात और भी समझने की है। बाबा ने कहा है कि ज्ञान का उल्टा प्रयोग नहीं करना है, ज्ञान को सुलटा समझना है। कभी कभी ज्ञान को उल्टा समझ लेते हैं कि जहां ड्रामा बोलना होता है, ड्रामा बोल के फुल स्टॉप लगाना होता है, वहां हम बदलने का पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं ये तो चेंज होना ही चाहिए, और उसका हम पुरुषार्थ करते हैं। और जहां पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है वहां ड्रामा कहके हम छोड़ना चाहते हैं, जबकि वहां पुरुषार्थ करना होता है। तो ये पुरुषार्थ और ड्रामा, इन दो शब्दों का कब उपयोग करना है ये बाबा ने हमें समझाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन शब्दों का बहुत महत्व है, पुरुषार्थ और ड्रामा। तो इसके प्रयोग करने के लिए एक ही चीज याद रखनी है आपको कि जब कोई घटना घटने वाली होती है तो उसको उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, और जब वो घटना घट जाती है तब हमें रिजल्ट कुछ भी आवे, चाहे हमारे फेवरेबल आवे या हमारे अगेंस्ट आवे, लेकिन तब हमें वर्ड यूज करना पड़ता है ड्रामा। घटना घटने से पहले पुरुषार्थ और घटना घटने के बाद ड्रामा, बस ये हमें याद रहेगा तो हम इन दोनों शब्दों का अच्छा उपयोग करके आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। जैसे हमें भाई सुबह 5 बजे का ट्रेन पकड़नी है, हमें 5 बजे ट्रेन छूटती है वो पकड़नी है, अब हमें पता है कि 5 बजे जाना है तो पुरुषार्थ करेंगे, पहली रात को ही हम सारा हमारा बैगेज पैक कर देंगे, जो भी रास्ते का भोजन लेना है वो सब ले लेंगे, सारी कुछ तैयारी करके ही सोएंगे, सवेरे फिर 2-3 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके स्टेशन के लिए निकलेंगे, दूर है स्टेशन। तो अगर जिस वाहन से हम जा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत फोन करके दूसरा वाहन बुलाएंगे या दूसरी टैक्सी लेंगे, पर कैसे भी करके हम क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि 5 बजे से पहले हम स्टेशन पहुंच जाए। अगर 200-300 मीटर दूर ट्रैफिक जाम है तो उतर के बैग हाथ में लेके भी पैदल चल पड़ेंगे, भाई ये ट्रैफिक में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, चलो स्टेशन पर पहुंचते हैं, अपन पैदल ही पहुंचेंगे। ये मेरे अपने जीवन की सत्य घटनाओं से मैं कह रहा हूं कि वो भी सब हम करेंगे। दिल्ली में ऐसा ही हुआ, जब हम आए थे पानीपत से तो वहां रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़, आगे ट्रैफिक जाम कि हाथ में बैग लेके पैदल ही निकलना पड़ा, और बहुत दौड़ते हुए जैसे हम गए, और जैसे ही हम वो फ्लाईओवर उतर के ट्रेन में पैर रखा और ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, तो पुरुषार्थ 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करने का। और मैंने देखा है कि हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। मैं मेरा लौकिक जो गांव है ये उदयपुर के पास में राजस्थान में, और अहमदाबाद में उस समय मैं रहता था, तो मेरी लौकिक दादी मेरे साथ रहती थी। तो एक बार नॉर्मली हम बस से ट्रैवल करते थे उदयपुर से अहमदाबाद, तो एक दिन उसने कहा कि आज हम ट्रेन से जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है ट्रेन से चलो, बस स्टेशन से थोड़ा ही दूर ट्रेन का था तो रिक्शा लेके हम गए ट्रेन पर, एक ही ट्रेन चलती थी शाम को 5 बजे के करीब। तो जाके मैंने टिकट विंडो पे बोला भाई हमको 2 टिकट दे दो, तो उसने कहा ट्रेन तो छूटने वाली है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप दे दो, हम कोशिश करते हैं पकड़ने की। तो टिकट लिया, उसको मैंने बोला तू चल धीरे धीरे मैं आता हूं, तो 2 बैग थे हाथ में तो वो मैंने पकड़ लिए, और फटाफट फटाफट हम स्टेशन पर उस पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन थी, लेकिन जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे ट्रेन छूट चुकी थी। और जब हम पास में गए तब तक लास्ट गार्ड का डिब्बा वहां से पास हो रहा था, लास्ट डिब्बा। माना कोई संभावना नहीं थी कि ये ट्रेन में हम बैठ सकते हैं। फिर भी मैंने कहा कि अभी तक घटना घटी नहीं है, पुरुषार्थ चालू रखो अपना। तो मैंने वो गार्ड को रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के ऐसे, मैंने कहा देखो ये बूढ़ी दादी मेरे साथ में, अभी ये लास्ट ट्रेन है, कैसे जाएंगे, ऐसे इशारे में उसको समझा रहा था कि आप ट्रेन रोको, विच वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कोई ट्रेन रुकेगी एक दो पैसेंजर के लिए चली हुई ट्रेन। ये बहुत वर्षों पहले की बात है, तब वहां मीटर गेज हुआ करता था। तो जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने चेन खींच ली गार्ड ने और ट्रेन रोक दी और हम दोनों को बिठाया, फिर ट्रेन चली। तो लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करने का, पुरुषार्थ करने का। लेकिन उसके बावजूद भी कोई घटना घटती है और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? ड्रामा। और ड्रामा कह के फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन देखा गया है कि अगर हमने ड्रामा के पीछे के राज को नहीं समझा तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। केवल ड्रामा शब्द से फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ड्रामा के पीछे जो राज है उनको अगर हम समझ जाएं, उसके लॉजिक को समझ जाएं, उसकी गहराई को समझ जाएं, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। तो वो क्या राज है? वो राज है ड्रामा की चार विशेषताएं। उन चार विशेषताओं को हम स्मृति में रख लें और उनकी सत्यता हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो फुल स्टॉप लग सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं टेबल रखा है, ये इसके चार पिलर हैं, पैर हैं जिस पर ये टेबल खड़ा है, उसमें से एक भी अगर हिलने डुलने वाला होगा, छोटा होगा, तो उस पर रखी हुई चीज स्थिर नहीं रहेगी, हिलती डुलती रहेगी। जरा हम किसी चेयर पर बैठते हैं और एक में नीचे प्लास्टिक की डट्टी नहीं होती तो ऐसे ऐसे हिलते हैं तो वो हिलती रहती है, लेकिन चारों एक जैसे हैं तो स्थिर रहेंगे सदा। तो ऐसे ही ड्रामा के इन चारों पॉइंट्स को हम अगर अच्छी तरह समझ के धारण कर लेंगे तो हम सदा स्थिर रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, चिंता नहीं होगी, मन भारी नहीं होगा। तो ड्रामा का पहली विशेषता, और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बाबा ने हमें मुरलियों में कई बार रेगुलर बाबा बताते ही रहते हैं, केवल हम रिवाइज कर रहे हैं, कि पहली विशेषता है कि ड्रामा फिक्स है। ये तो हम सभी जानते ही है कि ड्रामा फिक्स है, ड्रामा फिक्स है और सत्य है, ये इसकी पहली विशेषता है। अब आप सोचिए कि जो चीज फिक्स है उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो फिक्स है। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, रात का टाइम है, हम सब योग कर रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है और कुछ ऐसा होता है कि हमें हॉल से बाहर निकलना होता है और बिल्कुल घना अंधकार है, हम क्या करेंगे? लाइट चली गई, हमारे पास और कोई साधन नहीं, हम उठेंगे धीरे धीरे धीरे, कोशिश करेंगे जितना हमको अंदाज है रास्ते का। अगर हम गए और वहां दीवार पर हाथ लगाया हमने, अभी बाहर निकलना है तो क्या करेंगे हम? दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या दीवार पर सिर फोड़ के भाई चलो यहां से रास्ता हो जाए तो हम बाहर निकले? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये फिक्स है, ये बदलने वाली नहीं है, इसलिए हम दरवाजा ढूंढे बजाय कि इस पर सिर फोड़े। तो हमारी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं हो जाती है और जब घटनाएं हो गई तो वो तो फिक्स हो गई, फिर उन घटनाओं को हम बदलने के लिए सिर फोड़ते रहें, उसमें नुकसान हमें ही होता है, टाइम वेस्ट होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। एक बार रमेश भाई जी मम्मा के साथ पांडव भवन में कुछ मीटिंग कर रहे थे, मम्मा के कमरे में बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे। एक टीचर बहन मम्मा से मिलने आई, उसने आके मम्मा को सेंटर का समाचार सुनाया। उसमें कुछ सेंटर में ऊपर नीचे बात हुई थी, तो किसी भाई ने कुछ किया था, तो वो सारा समाचार सुनाया। तो मम्मा ने सुना, फिर मम्मा ने कहा, देखो बहन, अभी वो चीज हो गई है ना, अब वही सत्य है, उसको आप स्वीकार करो और आगे बढ़ो, उसमें उलझ के नहीं रहो आप। और मम्मा ने उसको समझाया उस एंगल से पूरा। वो बहन हल्की होके निकल गई वहां से। फिर जब वो गई तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, जो घटना वहां घटी सेंटर पर, वो भाई ने जो किया वो तो गलत किया था, वो तो बिल्कुल ही गलत था, यज्ञ के हिसाब से भी, दुनिया के हिसाब से भी गलत था, तो आपने क्यों बोला कि वह सत्य है? आप इसका रहस्य बताओ मुझे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि वो सत्य है, जबकि वो तो गलत था। तो मम्मा ने कहा कि रमेश जी, क्या ये जो घटना सेंटर पर घटी ये 5000 वर्ष पहले भी घटी थी? तो रमेश भाई ने कहा, हां घटी थी। क्या ये 5000 साल बाद भी घटेगी? तो कि हां, ये घटना तो घटेगी। तो कहा, जो घटना घट जाती है वो कल्प कल्प की नूंद होती है, उसे बदला नहीं जा सकता, और जो बदला नहीं जा सकता वो सत्य है, जो बदलता रहता वो असत्य है, लेकिन जिसे बदला नहीं जा सकता वही सत्य है, और उसे स्वीकार करना होता है। जब उसे हम स्वीकार कर लेते हैं कि हां ये चीज हो गई है, चलो अब इसको स्वीकार कर लो, आगे बढ़ो, तो हमारे मन में जो व्यर्थ के प्रश्न उठते हैं उसको हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं और हमारी यात्रा आगे बढ़ सकती है। इसलिए ड्रामा फिक्स है, सत्य है, जो हो चुका उसे हम खुले दिल से स्वीकार कर ले और आगे बढ़े। ड्रामा की दूसरी विशेषता है कि ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट इंग्लिश शब्द है, इसके लिए हिंदी में क्या कहेंगे इसको? एक्यूरेट मतलब यथार्थ, या उसे ये कह सकते हैं कि जैसा होना चाहिए वैसा है, जहां होना चाहिए वहां है, जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से है, एक्यूरेट है। अब अगर कोई चीज एक्यूरेट होती है तो उसके बारे में तो कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए, तो है ही एक्यूरेट है, फिर क्यों प्रश्न उठे? लेकिन उसके बारे में भी प्रश्न उठते हैं। इवन बाबा, हमने मुरलियों में सुना कि बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बाबा को भी सलाह देते हैं कि बाबा आप ऐसा करते ना तो ज्यादा अच्छा होता, आप वैसा करते ना तो ज्यादा अच्छा होता। ये ड्रामा ही बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है बिल्कुल। लेकिन हमारा क्या होता है, हम थोड़ा बुद्धिशाली कहलाते हैं ना अपने को, तो बुद्धिशाली व्यक्ति थोड़ा बुद्धि का ज्यादा उपयोग करता है और उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालता है और फिर अपने आप को अशांत कर देता है उससे। एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था, बहुत बरसों पहले की बात है ये, वो बहुत ज्यादा होशियार, हर किसी को सलाह देना वो उसका संस्कार था, जिसको भी देखेगा सलाह देगा, आप इसमें ऐसा करो, आप उसमें वैसा करो, आप ये करो, आप वो करो। लोग परेशान हो गए उससे, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़े। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पैदल जाना था, सवेरे सवेरे निकला। जैसे ही गांव के बाहर गया तो वहां एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाहर कुछ फल सब्जियां उगाई हुई थी, तो उसमें से एक बेल जो है वो उस झोपड़ी की दीवार के सहारे होते होते ऊपर छत तक गई थी और छत पर एक कद्दू पंपकिन लगा हुआ था 5-7 किलो का, छत के ऊपर था। तो वो खड़ा खड़ा देखने लगा, सोचने लगा कि भगवान के यहां भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। बोले इतनी पतली सी बेल जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, उसके ऊपर ये 5-7 किलो का कद्दू लगा दिया, ये कैसे रहेगा बेल पर? ठीक नहीं है, भगवान के यहां प्लानिंग चेंज करना पड़े थोड़ा। सोचते सोचते आगे बढ़ा। दोपहर हुई, बहुत धूप थी, प्यास लगी, थक गया था, सोचा कहीं ठंडा पानी मिले तो पी के विश्राम करूं। आगे एक कुआं दिखाई दिया, कुएं से पानी निकाला, पिया, और बाजू में बहुत बड़ा पेड़ था, घना पेड़ था, उसकी बहुत छाया थी, तो वहीं अपना तौलिया डाला और ऐसे विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटे लेटे ऊपर नजर पड़ी तो एप्पल जैसे वो बेल फल होते हैं ना, आपने देखा होगा बेल फल, बिलपत्र का बेल फल, वो लगे हुए थे। फिर विचार चला कि देखो यहां भी गलती कर दी भगवान ने, इतना बड़ा पेड़ कि मैं अपने दोनों हाथ से भी उसको कवर नहीं कर सकता, इतनी मोटी मोटी इसकी ब्रांचेज है, डालियां है, इतना मजबूत है और उस पर फल देखो इतना सा लगाया। एक्चुअली तो वो कद्दू यहां होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं भगवान के यहां भी जो है चीजें अस्त व्यस्त है। सोचते सोचते नींद आ गई, थका हुआ तो था, ठंडी हवा चल रही थी, अचानक एक पका हुआ बेल फल नीचे गिरा और सीधा यहां गिरा, इतना जोर से गिरा कि वो तो बेहोश ही हो गया। लोग उधर से गुजर रहे थे, सोचा ये कोई बेहोश पड़ा है तो पानी छींटा उसको, तो होश में आया, देखा मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, चेक किया, बोले क्या हुआ, ये दर्द क्यों हो रहा है यहां और मैं बेहोश कैसे हो गया? बाजू में देखा तो बेल फल था, कि अच्छा ये ऊपर से बेल फल गिरा इसके लिए मैं बेहोश हो गया। सोचने लगा कि वो कद्दू ऊपर होता और वो गिरता तो क्या होता। तब उसको अक्कल आई कि नहीं, भगवान के यहां सब एक्यूरेट है, भगवान के यहां गलती नहीं है, सब एक्यूरेट है, जिसको जहां होना चाहिए वही है। तो ड्रामा की दूसरी विशेषता हमने सुनी कि ड्रामा एक्यूरेट है, स्वयं भगवान ने कहा एक्यूरेट है, इसलिए कहीं हमको समझ में नहीं आ रहा हो तो भी हम माने कि भगवान ने कहा एक्यूरेट है, इसलिए उसको हम स्वीकार करें और आगे बढ़े। ड्रामा की तीसरी विशेषता है ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याण का क्या अर्थ होता है? 100% पॉजिटिविटी, एक इंक्लूसिव वर्ड है कल्याण, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा समाया हुआ हो वो कल्याणकारी है, सब कुछ अच्छा ही होना है। अगर आप बेहद की दृष्टि से देखें तो इस घोर कलयुग से हम स्वर्णिम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, तो ओवरऑल तो कल्याणकारी हो ही गया कि इससे कलयुग से हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो हो जाता है उसमें भी कल्याण ही है। कभी कभी वो कल्याण हमें दिखाई देता है, कभी कभी वो कल्याण हमें नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है तो थोड़ा धीरज धरना चाहिए, लेकिन भगवान के इन महावाक्यों पर विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, मतलब उसमें कुछ कल्याण है, छुपा हुआ है। एक सेंटर के लिए रिट्रीट सेंटर की जमीन ली थी, तो 2-3 बार मुझे वहां जाना पड़ा था वो जमीन फाइनल करने के लिए। जब फाइनल हो गई उसके बाद उसका फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम था सितंबर मास में, तो मुझे बहन जी ने इनवाइट किया कि ललित भाई आपको भी आना है, आप जरूर इसमें आए। इनका ठीक है आएंगे, फ्लाइट टिकट बुक हो गया था जाने का। प्रोग्राम के 5-6 दिन पहले बहुत ही जबरदस्त बारिश, नॉर्मली सितंबर में बारिश होती नहीं है उस एरिया में, लेकिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई। तो रिट्रीट सेंटर मतलब खेत था वो, तो जमीन तो पूरा पानी भर गया। तो बहन जी का मुझे फोन आया कि ललित भाई बारिश तो यहां बहुत हुई है। मैंने कहा समाचारों में सुना हमने। बोले पानी भर गया है वहां तो, और जो मंडप डेकोरेटर है वो मना कर रहा है कि वो टेंट नहीं लगा सकता, जब तक सूख नहीं जाता तब तक वो टेंट नहीं लगाएगा, और इतने बड़े एरिया में टेंट लगाना है तो उसको 3-4 दिन तो टेंट लगाने में चाहिए। इसलिए उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं कर सकता अभी, क्या करूं। और अभी भी मौसम विभाग का तो यही कहना है कि और बारिश होगी अगले 2-4 दिनों में भी। तो हमने कहा बेन जी जब अपने हाथ की बात नहीं है तो फिर आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। का सारी तैयारी हो गई, दिल्ली से ब्रिजमोहन भाई भी आ रहे हैं, सबकी फ्लाइट टिकट हो गई, यहां सब तैयारी कर दी, सामान खरीद लिया, ये हो गया, और अब कैसे क्या करें। मैंने कहा देखो अपने हाथ की बात नहीं है, अगर हमारे हाथ में होता तो हम सब पुरुषार्थ करते, लेकिन ये हाथ की बात ही नहीं है तो इसको पोस्टपोन करना ही ठीक है, इसी में कुछ कल्याण है। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, इसी में कुछ कल्याण है। अब नुकसान इतना हो रहा था लेकिन और रास्ता कुछ नहीं था, तो बहन जी ने कहा ठीक है अपन पोस्टपोन करते हैं इसको। तो प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। वो 15-20 दिन बाद मधुबन आए, दादी जानकी जी से मिले और दादी जी को कहा दादी जी ऐसे रिट्रीट सेंटर का फाउंडेशन स्टोन का कार्यक्रम करना है, आप पधारो तो बहुत अच्छा है, आप बहुत बरसों से नहीं आए हैं। तो दादी ने हंसा बेन को बुलाया, कैलेंडर देखा तो 8 दिन के बाद की डेट दी उनको कि 8 दिन बाद दादी आ सकती है। उस समय दादी वैसे चार्टर्ड फ्लाइट से जाती थी लेकिन वो अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो दादी ने कहा कि वो डायरेक्ट फ्लाइट से आ जाएगी और 8 दिन बाद आएगी। तो वो बहन जी मेरे ऑफिस में आए, आके कहा ललित भाई दादी जी आ रहे हैं फाउंडेशन स्टोन के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले आपको भी आना है? मैंने कहा हाँ हम दादी जी के साथ ही आ जाएंगे। बोले लेकिन 8 ही दिन है, कैसे करेंगे इतना सब तैयारी? हमने कहा देखो ड्रामा ने रिहर्सल तो आपसे करवा ही ली थी, तो सारी एजेंसीज तो सब आपके कॉन्टेक्ट में है ही है, आप तो फोन करो और काम चालू करवा लो, हो जाएगा, सब अच्छा होगा। 8 दिन बाद जब हम पहुंचे तो जैसे कल सवेरे प्रोग्राम है 10 बजे, तो आज हम पहुंच गए थे दिन में दोपहर में, तो शाम को वहां के चीफ मिनिस्टर साहब दादी जी से सेंटर पर मिलने आए और 40-50 VIPs का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा और 1 घंटा वो CM साहब दादी के साथ रहे। पहली बार आए थे ब्रह्मा कुमार इसके प्रोग्राम में और 1 घंटा दादी के साथ उन्होंने बिताया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि दूसरे दिन उनको कहीं जाना था। तो वो सेंटर पर आ गए, फिर दूसरे दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, 2-3 और मिनिस्टर, 3-4 सेक्रेटरीज और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ वहां। 4-5 हजार भाई बहने थे। जब हम गए वहां तो चूंकि वो जमीन पर पहले मैं जा चुका था तो मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर थी वो जमीन, तो कच्चा रोड था, जाने में दिक्कतें होती थी, पर चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स आ रहे थे तो गवर्नमेंट की ओर से ही वो पक्की रोड बनवा दी पूरी वहां तक जाने के लिए, और सारे कांटे दूर कर करा के साफ सफाई कर दी, इतना अच्छा टेंट लगाया, भव्य प्रोग्राम संपन्न हुआ पूरा। फिर प्रोग्राम पूरा हुआ, हम भोजन पर बैठे थे तो मैंने कहा बहन जी हो गया प्रोग्राम? अच्छा। बोले हाँ ललित भाई बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा लेकिन थोड़ा महीना पहले जो अपना पोस्टपोन किया उस समय थोड़ा आपको दुख हो रहा था? बोले नहीं नहीं वो कल्याणकारी है, वो कैंसल हुआ ना उसमें ही कल्याण है। वो कल्याण कब दिखाई दिया हमें? 1 महीने बाद दिखाई दिया, लेकिन था उसमें कल्याण। जो इतना भव्य प्रोग्राम, CM डिप्टी CM जो पहले नहीं आ रहे थे 1 महीना पहले, वो भी आ गए दादी के कारण, और इतना भव्यता से संपन्न हुआ। तो मैंने देखा है, मेरी पर्सनल लाइफ में देखा, मेरे लौकिक परिवार, मेरा 7 साल बांदेला का पार्ट था ज्ञान में, बहनों का बांदेलियों का होता है, मेरा बांदेला का पार्ट था। तो घर वाले चिंता करते थे कि ये शादी नहीं कर रहा है, कल इसको कौन खिलाएगा, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, ये वो सब चिंता करते थे बड़ा, और इसी कारण वो बहुत विरोध करते थे। एक बार मैं 2-व्हीलर से जा रहा था वहां अहमदाबाद में, तो गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, यहां बड़ा दो ऑपरेशन हुए पैर में। मैं उस समय रहता था तो घर पर ही, लेकिन सेंटर पर काफी सेवाएं करता था। तो बेन जी ने बोला कि नहीं ललित भाई, अभी आपको फुल प्लास्टर आया है, आप सेंटर पर ही रहेंगे। तो वो हॉस्पिटल से मुझे सेंटर पर ले गए। तो सेंटर पर ही मैं सेवाएं भी, बेड पर सोए सोए लैपटॉप में सेवाएं करता था और सारा हो जाता था। तो लौकिक वाले सब मिलने आते थे, वो देखते थे कि इसको तो टाइम पे गर्म भोजन भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, दवाई भी मिल रही है, डॉक्टर के पास भी ले जा रहे हैं। तो बोला अब तेरी चिंता नहीं, अब हमारी चिंता है कि हमारा कौन करेगा। तो पैर टूटा, लेकिन कल्याण ये हुआ कि वो मेरे से निश्चिंत हो गए सब। तो हर घटना जो हमारे साथ घटती है उसमें कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है। हम थोड़ा या तो अपनी दृष्टि ऐसी रखें कि उसमें से ढूंढ ले, या थोड़ा धीरज धरे, थोड़े समय बाद वो कल्याण दिखाई देगा। लेकिन मन में प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, मन को भारी करने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उसमें भी कोई कल्याण छिपा हुआ है। ये ड्रामा की तीसरी विशेषता। और ड्रामा की चौथी विशेषता है कि ड्रामा न्यायकारी है, जस्टिफिएबल है। ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। प्रायः जब हमारे को कुछ नुकसान हो जाता है या हमारे परिवार वाले मित्र संबंधी को कुछ नुकसान हो जाता है तो मन में प्रश्न उठते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसने तो कभी चींटी तक नहीं मारी, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न बहुत भारी कर देता है मन को, आत्मा उड़ नहीं सकती उस भारीपन के साथ। लेकिन बाबा ने कहा है कि ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। जो भी आज हमारे साथ घटित हुआ है वो हमारे ही किसी कर्म का फल मिल रहा है। वो कर्म हमने एक घंटे पहले किया, एक दिन पहले किया, एक मास पहले किया, एक वर्ष पहले किया, या एक जन्म पहले किया, या 10 जन्म पहले किया, हमें याद है या नहीं याद है, लेकिन जो कुछ घट रहा है हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है। कर्म छोड़ता नहीं है। हां, याद में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, पर कर्म तो जरूर, उसका फल तो जरूर मिलेगा। एक बार एक कोर्ट में जज साहब को एक व्यक्ति को फांसी की सजा देनी पड़ी, मर्डर के केस में उसको फांसी की सजा सुनाई। कैपिटल पनिशमेंट देने के बाद ऑर्डर दे दिया, उसके बाद जज ने उसको अपने चेंबर में बुलाया, उस व्यक्ति को अकेले में, और बुलाने के बाद पूछा कि मैंने तेरे को फांसी की सजा दी क्योंकि सारे गवाह तेरे खिलाफ थे, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि तूने ये मर्डर नहीं किया, क्योंकि जिस एरिया में ये मर्डर हुआ मैं वहां मॉर्निंग वॉक करता हूं और मैंने खुद देखा मर्डर होते हुए, तू नहीं था उस समय, लेकिन सारे ही गवाह तेरे खिलाफ थे इसलिए तेरे को ये सजा तो देनी पड़ी। तू बता कि ऐसा क्या किया तूने पहले कि जिसके कारण तेरे को ये सजा मिली। मेरे को मन में बड़ा भारीपन हो रहा है कि मैंने गलत व्यक्ति को सजा दी। तू बता कोई ऐसी घटना घटी तेरे जीवन में पहले? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब, 10 साल पहले मेरे से एक मर्डर हो गया था, लेकिन उस समय मैं पकड़ा नहीं गया था, तो मैं सोच रहा था कि चलो मैं छूट गया उससे, लेकिन मुझे नहीं पता कि 10 साल बाद इस रूप में वो फल मेरे सामने आएगा। तो कहने की बात है कि कुछ भी हमारे साथ हुआ है लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे सकते, न बाबा को दोष दे सकते हैं, न ड्रामा को दोष दे सकते हैं। जो कुछ हो रहा है वो न्यायकारी है, वो ही होना है, इसीलिए वो हुआ है। बेन जी को याद होगा, बड़ी दीदी के लिए डॉक्टर भगवती को दोष देते थे, मनमोहिनी दीदी का ऑपरेशन के बाद डेथ हो गया था तो सब कहते थे कि डॉक्टर भगवती से ठीक नहीं हुआ या ऐसी कुछ बात होती थी। तब बाबा की स्पेशल मुरली चली थी कि न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब जब हम किसी को दोष नहीं दे सकते तो मन में प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए। अच्छा, इसको एक और विधि से हम समझ सकते हैं कि सपोज किसी पर 5 लाख रुपए का लोन है और उस पर उसको भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो ब्याज का बहुत बोझ उसके सिर पर है। अभी उसको 5 लाख की लॉटरी लग जाती है तो वो लॉटरी को क्या करेगा? वो लॉटरी के पैसे का क्या करेगा? लोन चुका देगा। क्या उसको दुख नहीं होगा कि मेरा 5 लाख चला गया? उसको दुख होगा या खुशी होगी वो पैसा चुकाने से? खुशी होगी ना कि मेरा लोन चुकतू हो गया। इसी प्रकार से हमारे पिछले कर्म, उसमें कुछ गलतियां हुई है अगर, तो वो हमारे पर लोन के रूप में है और लोन के कारण हमें उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अगर ऐसी कोई घटना घटती है और वो लोन चुकतू हो जाता है तो हमें खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? घट गई घटना, चलो लोन चुकतू हो गया, पुराना हिसाब किताब था वो क्लियर हो गया, तो मन को खुश होना चाहिए। क्या क्योंकि क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए। और यही ज्ञान कहता है, यही बाबा हमें समझाता है। और इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो क्या होगा? मन प्रश्नों से पार हो जाएगा। तो ड्रामा की इन 4 विशेषताओं को अगर हम समझ के स्मृति में रखें तो कोई भी परिस्थिति आवे, कुछ भी बात हो, तो हम अशांत नहीं होंगे, प्रश्नों से मन भारी नहीं होगा। कौन कौन सी 4 विशेषता? पहला फिक्स है, दूसरा एक्यूरेट है, तीसरा कल्याणकारी, चौथा न्यायकारी है। सबने डायरी में भी नोट कर लिया, इस डायरी में भी नोट कर लिया होगा सभी ने। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें समय पर याद आएगा? बाबा ने तो कई बार कहा है, बरसों से कहा है। मूल बात क्या है? मैंने तो केवल आपको रिपीट किया, अभी याद दिलाया, बाकी तो बाबा से हमने मुरलियों में सुनाई है। तो क्या जब ऐसी कोई घटना घटेगी, ऐसी कोई बात होगी, तब ये ड्रामा के 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट हमें याद आएगा ताकि हम उसको फुल स्टॉप लगा सके? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो बहुत है, सवेरे उठ से ही व्हाट्सएप देखो तो इतने गुड मॉर्निंग के मैसेज और अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट और वीडियो आ जाते हैं कि बात नहीं पूछो। लेकिन मूल बात है कि समय पर वो याद आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली क्या होता है, जब दूसरों के साथ कुछ होता है तब हमें याद आता है और हम उसको समझाते भी है बड़े अच्छी तरह से, लेकिन सब जब खुद के साथ गुजरता है तब वो कहीं वो पॉइंट ही गायब हो जाती है। जो पूजा की थाली में से कपूर गायब होता है, ऐसे दिमाग से ये पॉइंट ही गायब हो जाती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। किसी के यहां कुछ भी घटना घटती थी, किसी की डेथ हो गई, किसी की कुछ हो गया, तो वो पहुंच जाता, क्योंकि घर में रोते थे लोग, बड़े चिल्लाते थे, दुखी होते थे, वो पहुंच जाता था। वो पहुंच के उसको समझाता था, उनको गीता का, रामायण का, महाभारत का अलग अलग दृष्टांत देके समझा के उनको शांत करता था और वो शांत भी हो जाते थे और सब बड़े खुश थे उससे। पूरे गांव में ये था कि ये ब्राह्मण जो है, ये महाराज बड़े विद्वान है, ज्ञानी है और ज्ञान को धारण किया है इन्होंने। एक बार एक माता और उसकी एक छोटी बच्ची, वो गांव से जा रहे थे, गली से गुजर रहे थे, तो अचानक उनको जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि यहां कौन रो रहा है। ध्यान से कान लगाया तो पता चला कि इस घर में से आवाज आ रही है। तो कहा, ये तो वो ब्राह्मण का घर है, इसमें से क्यों आवाज आ रही है इतनी रोने की जोर से। तो दरवाजा खोला, अंदर गए तो आंगन में ही वो ब्राह्मण जोर जोर से रो रहा था। तो वो माता ने पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे हो, और वो भी इतना जोर से रो रहे हो आप सब। तो उसने रोते रोते कहा, मेरी बकरी मर गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जो छोटी बच्ची थी उसको आश्चर्य हुआ कि एक महीना पहले मेरे जवान पिताजी 40 साल के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, और हम इतने दुखी थे कि हमारा तो जैसे संसार ही उजड़ गया, और हम इतने रो रहे थे, तो आप आए और आपने कितना अच्छा हमको सब समझाया। आपने वो गीता का श्लोक भी सुनाया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, आपने कितना अच्छा सुनाया, और हम उन सबको सुन के इतना शांत हुए, तो आप इतना रो रहे हैं। तो उसने कहा, वो आपके पिताजी थे, ये मेरी बकरी है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को सुनाने में तो याद आ जाता है सब चीजें, लेकिन खुद के साथ कुछ घटना घटे और तब ये ज्ञान की पॉइंट हमें स्मृति में रहे, तब हमारे उन प्रश्नों पर फुल स्टॉप लग सकता है और मन शांत हो सकता है। दीदी ये कह रहे हैं कि समय पर जब ऐसी कोई घटना घटती है तब याद आना एक बात है, लेकिन याद आने के बाद उस पर स्थिर रहना, उसको धारण कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दीदी हमने ये बताया कि ड्रामा याद आ जाता है, जब ऐसी कोई भी बात होती है तब ड्रामा याद आ जाता है, लेकिन ड्रामा के पीछे का जो तर्क है, जो ज्ञान की गहराई है, वो अगर हम समझ के अपने में धारण करेंगे तो ड्रामा के फुल स्टॉप लगा सकेंगे, बाकी ड्रामा कहने के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और इसीलिए ये चारों पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हम इन चार पॉइंट्स की चार दीवारी के अंदर हैं, तो मैं समझता हूं कि जीवन में कुछ भी घटना घट जाए पर हमें वो अशांत नहीं कर सकती, हमें दुखी नहीं कर सकती, हमारे मन में क्वेश्चंस की क्यों नहीं लग सकती है, अगर इन चारों पॉइंट के रहस्य को समझ के हमने उस समय स्मृति में रखा और याद किया। तो मेरा तो यही गुड विशेष है कि रिटर्न जर्नी का गहरा अभ्यास करने के लिए आप सब यहां पधारे हैं, तो अपने मन को ड्रामा के इन पॉइंट्स के द्वारा फुल स्टॉप लगा के एकदम मन शांत कर लेवे, और बाबा की याद से इन पॉइंट्स का बल आप में भरे, आत्मा में भरे, जो उस समय पर उसको हम इंप्लीमेंट कर सके। और हम सब की रिटर्न जर्नी बहुत ही उमंग उल्लास वाली रहे, यही शुभकामना है। ओम शांति।
ओम शांति। ललित भाई जी का क्लास सुन रहे थे तो मुझे रमेश भाई जी भी याद आए और ब्रजमोहन भाई साहब भी याद आए। उन दोनों का, दोनों हमारे वरिष्ठ भाई, हमारे इस यज्ञ के पिलर फाउंडेशन, उन दोनों का रिफ्लेक्शन ललित भाई जी के क्लास में दिखाई देता है और महसूस भी होता है, और पता ही नहीं चला कि एक घंटा कैसे बीत गया। और आपने बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बड़ों के साथ का आपने शेयर किया भाई जी, दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। अभी हम सभी यहाँ पे बैठे रहेंगे और हम सभी नुमा शाम का योग बाबा के साथ अनुभव भी करेंगे, और हमारे बीच में हरीश भाई भी आ रहे हैं, उनके साथ और एक भाई भी हैं, और हम सभी मिलकर के बहुत सुंदर गीत संगीत के द्वारा आज बाबा के साथ का एक्सपीरियंस भी